నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భగవాన్ కి మధుర వాణి సే సునా కి అప్నే నియత్ కర్మ కర్నే కా మహత్వ క్యా హై. నియత్ కర్మ కా అర్థ హై ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్యూటీస్, జో కి హమ్ మనుష్యో కి జిమ్మేదారీ హై. విభిన్న ప్రకార కే వర్ణ ఔర్ ఆశ్రమ మే స్థిత్ రహతే హువే तो भगवान ने जब इस श्लोक में ये प्रमुख मुद्दे कहे जिनकी हमने चर्चा की पिछले हफ्ते, तुम अपना नियत कर्म करो हे अर्जुन, क्योंकि कर्म करना कर्म न करने से श्रेष्ठ है और कर्म किए बिना तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं हो पाएगा. तो अब यहाँ श्रील प्रभुपाद बलदेव विद्याभूषण जैसे हमारे वैष्णव आचार्य वो इस श्लोक को, ये जो पिछले हफ्ते हमने लिया और आज का जो श्लोक हम लेंगे, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है आज का, तो इसके बीच में हमारे आचार्य प्रस्तुत करते हैं. मानो कि भगवान ने जब ये श्लोक कहा, आठवां श्लोक तीसरे अध्याय का, तो हम लोग जो ये श्लोक सुने या इस संसार के कोई लोग जो ये श्लोक सुने, तो एक प्रश्न उनके मन में उठा कि जो लास्ट लाइन है भगवान ने कह दिया क्या कि कर्म किए बिना तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं हो पाएगा. तब फिर लोग क्या मानते हैं, ये प्रश्न क्या उठाते हैं कि देखो आपके भगवान कृष्ण ही गीता में कहते हैं कि शरीर निर्वाह के लिए कर्म करो. अब आपको समझ में आए कि वही लाइन को दूसरी तरीके से कैसे प्रस्तुत कोई कर सकता है कि शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना. लोग कहते हैं ये भगवद गीता का सिद्धांत. तो हां, भगवान ने यह कहा शरीर यात्रा अपिचते, कि जो शरीर यात्रा, पिछले हफ्ते हमने चर्चा की कि शरीर की यात्रा क्या है, बाल्यावस्था से युवावस्था, वृद्धावस्था और उसके पश्चात फिर अगला जन्म. तो ये जो यात्राएं हैं इस शरीर की, इस यात्रा को सफल करने के लिए हमें जो कर्म करना पड़ता है उसे भगवान ने कहा इस श्लोक में. तब ये प्रश्न उठा कि अरे भाई, तो फिर हम हमारे शरीर निर्वाह के लिए जो भी कर्म कर रहे हैं तो उसमें हानि क्या है, हम क्या भगवत गीता का पालन नहीं कर रहे. पापी पेट का सवाल, उसके लिए जो हम उत्तर जवाब ढूंढ रहे हैं उस सवाल के लिए, वो भी हमारा भगवत गीता का ही कर्म है. तो ये समझना है कि हम लोग ये एक हफ्ते बाद आज का श्लोक ले रहे हैं 3.9, लेकिन बल्लेव विद्याभूषण जैसे आचार्य वो कहते हैं कि ये दोनों श्लोक 3.8 और 3.9 आज का श्लोक भगवान ने एक ही सांस में कहा. समझ में आ रहा है आपको, मतलब देयर वाज वन सेंटेंस कृष्णा स्पोक इन वन ब्रेथ. अब कई बार क्या होता है कि अगर कोई स्टेटमेंट कर रहा है, कोई वाक्य बोल रहा है, अगर बीच में ही आप उसको काट दो पूरा वाक्य सुने बिना, तो कई बार मतलब उल्टा निकल जाता है। जैसे एक दंपति, उसमें पति को नींद नहीं आती थी रात को, तो पत्नी डॉक्टर के पास लेकर गई जबरदस्ती। डॉक्टर को बताया कि ये सारे लक्षण हैं, सोते नहीं रात भर। तो डॉक्टर ने नींद की गोली निकाल कर दी, कहा कि ये नींद की गोली मैं दे रहा हूँ। तुरंत वो पत्नी बोली, ये खाने से पहले लेनी, खाने के बाद लेनी, इनको कब दूँ? डॉक्टर ने कहा, रुकिए, ये गोली उनके लिए नहीं, आपके लिए। ये नींद की गोली आपके लिए है, ताकि वो चैन से सोएं। तो यहां उसने स्टेटमेंट पूरा करने से पहले ही उसने पत्नी ने काट दिया। तो ये जो पिछले हफ्ते का श्लोक और ये जो आज हम श्लोक ले रहे हैं, ये दो हम लोग क्योंकि एक हफ्ते बाद आ रहे हैं, इसलिए हमारी स्थिति को देखते हुए आचार्य कहते हैं कि हाँ, बल्ल्य विद्याभूषण जानते थे कि गीतामृत के बीच में एक हफ्ते का गैप होगा, 3.8 और 3.9 के बीच में। तो ये प्रश्न बहुत लोगों को मन में उठेगा कि अरे, भगवान का तो ये संदेश है, फिर हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें क्या खराबी है? तो इसलिए आज का जो श्लोक है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध श्लोक है। श्रील प्रभुपाद ने बहुत प्रवचन दिए श्लोक के ऊपर, और तीसरे अध्याय का और भगवद गीता का यदि मर्म हमें जानना है, बहुत से श्लोक हैं जिसके अंदर भगवद गीता का मर्म बताया गया है, उनमें से ये एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। तो ये जो प्रश्न कई बार हमारे मन में उठते होंगे कि ये कर्म कर्म योग क्या है, माजरा क्या है के बीच में, हाउ टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली कर्म कर्म योग, तो आज का श्लोक उसका उत्तर है। यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यहां भगवान कह रहे हैं कि केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म नहीं करना है, उसका उत्तर प्रारंभ हो रहा है। यज्ञ अर्थात कर्मण, कैसा कर्म करना है कि जो यज्ञ के अर्थ को सिद्ध करे, जो यज्ञ के समान कर्म हो, वैसा कर्म करना है। अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, उसके अलावा, अन्यत्र उस यज्ञ रूपी कर्म के अलावा यदि कोई कर्म करता है तो वो कर्म क्या करता है, उसे कर्म बंधन में बांधता है। तदर्थम कर्म कौन्तेय, हे कौन्तेय, इसलिए उसके लिए कर्म करो। कैसे? मुक्त संग और समाचर। तो श्रील प्रभुपाद का अनुवाद इस प्रकार से है, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम कर्म बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो इसी अध्याय के आगे का एक श्लोक है ये 16वां श्लोक। तो यहां पर भगवान कहते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तय तिहय अघायुर इंद्रिय रामो मोघम पार्थ सजीवति। तो ये जो प्रश्न आज हमने जिसकी शुरुआत आज के प्रवचन की शुरुआत की इस प्रश्न से कि क्या कर्म केवल शरीर निर्वाह के लिए करना चाहिए, तो इस श्लोक में भी भगवान कह रहे हैं 3.16 में कि जो जीव केवल अघायुर इंद्रिय आराम, केवल अपने इंद्रिय आराम के लिए कर्म कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? अघ। अघ का अर्थ क्या है? पाप। तो पाप कर रहा है। मोहम पार्थ सजीवति, उसका जीवन व्यर्थ। तो ये भी आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, श्लोक को जब आएगा हमारा। तो वो जो प्रश्न हमने लिया, उस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में भी भगवान ने दिया है। तो आज के हमारे चर्चा के विषय, यज्ञ के लिए कर्म करने के अतिरिक्त अन्य कर्मों से बंधन प्राप्त होता है, ये भगवान ने कहा। इसलिए हे कौन्तेय, तुम उसी यज्ञ के लिए कर्म का आसक्ति रहित होकर अच्छी प्रकार आचरण करो। तो ये आज का जो श्लोक है वो एक एक वर्ड, एक एक सिलेबल सूत्र है उसके अंदर। ऐसा सूत्र है उसके अंदर कि अगर हम एक एक वर्ड, एक एक अक्षर को ठीक प्रकार से समझेंगे तो समझ लीजिए कि ये जो हर समय हमारे अंदर द्वंद्व चलता है कर्म कर्म योग के विषय में, वो सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान से यदि आपको वो सॉल्व करना है, जो क्लासिक क्वेश्चन लोगों का होता है भगवद गीता को पढ़ने के पश्चात कर्म के संबंध में, तो वो आज पूरा हो जाएगा। शुरुआत करें? कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, सब जगे हुए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि जब भगवान ने यहां पर कहा यज्ञार्थात कर्मणो, तो ये यज्ञ क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यज्ञ? कौन जानता है यज्ञ का अर्थ क्या है? हाँ, सैक्रिफाइस। हाँ, हम बोलेंगे प्रभुपाद ने इसको इस प्रकार से भी ट्रांसलेट किया है। और जनरली यज्ञ ये शब्द जब हमारे कानों में पड़ता है तो हमारे सामने क्या दिखता है? ये सब कुछ दिखता है, हवन, फायर, सैक्रिफाइस जिसे कहते हैं। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे? कर्म का, तो आपके अनुसार यज्ञ का अर्थ है स्वधर्म करना, स्वयं के धर्म में स्थित होना, आपके अनुसार वो यज्ञ है। और कुछ? हाँ, थोड़ा जोर से। देवताओं को आहुति देना, अगले श्लोक में भी उसके विषय में भगवान कह रहे हैं। हाँ, भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना, बहुत अच्छा। तो क्योंकि यहां पर यज्ञ और अर्थ यज्ञ का, और श्रील प्रभुपाद का ट्रांसलेशन क्या है? दैट वर्क विच इज परफॉर्म्ड फॉर द प्लेजर ऑफ श्री विष्णु तदर्थम। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये जो शास्त्रों पर आधारित ये यज्ञ का कनेक्शन भगवान श्री कृष्ण से कैसा है, ध्यान में रखना होगा। कि यहां पर भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम जो कुछ इस रणभूमि पर करोगे वो तुम मेरी प्रसन्नता के लिए करोगे, और मेरी प्रसन्नता के लिए जो भी कर्म किया जाता है वो यज्ञ होता है। तो इस श्लोक के द्वारा भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि अर्जुन, तुम यहां पर युद्ध नहीं लड़ रहे, तुम यज्ञ कर रहे हो। तो सबसे पहले अर्जुन यज्ञ कैसे कर रहे हैं उसे समझने के लिए पहले यज्ञ इस शब्द को समझना है। तो एक शास्त्र है तंत्र सार, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण जो कि पांच प्रकार से यज्ञों के आत्मा हैं, ये बताया गया। यज्ञो यज्ञ पुमांश्चैव यज्ञेशो यज्ञ भावना यज्ञ भुक्चेति पंचात्मा यज्ञेश विज्ञो हरि स्वयं। तो ये तंत्र सार इतना कोई कॉमन स्क्रिप्चर नहीं है, परंतु जिसके अंदर यज्ञ विषय बहुत कुछ बताया गया है, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण को यज्ञ का आत्मा बताया गया। इसको कहते हैं लाइफ ऑफ यज्ञ। तो सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी यदि हम योनि को लें तो उसमें है प्राणवायु, लाइफ, आत्मा। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण को पंचात्मा कहा है। तो ये पांच प्रकार का इंट्रोडक्शन है यज्ञ का इस श्लोक के अनुसार। तो यज्ञ, अब यज्ञ कोई ये समझता है कि जैसे हमने वो चित्र देखा कि केवल कोई आहुति, कोई फायर सैक्रिफाइस कर रहा है, उसमें आहुति डाल रहा है, तो उसको यज्ञ मानते हैं। परंतु वो तो खैर बहुत ही सिंपलिस्टिक एक अंडरस्टैंडिंग है यज्ञ का। इसके ऊपर तंत्रसार कहता है कि यज्ञ पुरुष होता है। जैसे कि माताजी ने कहा कि देवताओं को आहुति दी जाती है, तो जो देवता है वो आहुति किसके बिहाफ पर स्वीकार कर रहे हैं? यज्ञ पुरुष के बिहाफ पर। और यज्ञ पुरुष कौन है? कृष्ण, इस श्लोक के अनुसार हरि स्वयं। ध्यान में रखना, वो श्लोक हमने लिया हरि स्वयं। तो कोई कहेगा कि यदि भगवान श्री कृष्ण यज्ञ पुरुष हैं, तो फिर उनमें और देवताओं में या उनमें और हम में क्या अंतर है? तो यहां पर कहा गया है वो केवल यज्ञ पुरुष नहीं, यज्ञ ईश्वर हैं, यज्ञ के ईश्वर हैं। यज्ञ के ईश्वर भी नहीं, यज्ञ के भोक्ता हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, यज्ञ में चाहे आप कितनी भी सामग्री शुद्ध तरीके से रख लो और मंत्रोच्चारण एकदम पूरा पक्का मंत्रोच्चारण होता रहे उस यज्ञ में, कोई भी त्रुटि नहीं हो, खैर आजकल तो संभव ही नहीं है, सत्युग इत्यादि में वो सब यज्ञ हुआ करते थे, पूरा एक राज्य इतना बड़ा वो यज्ञ का एरिना हुआ करता था, केवल एक कुंड नहीं। तो चाहे सब कुछ हो एकदम अपने पूर्ण शुद्ध अवस्था में, परंतु यदि भावना नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लाइफ, उस यज्ञ का लाइफ क्या है, भावना, तो वो भावना यदि नहीं, तो वो भावना जो स्वीकार करते हैं और जो शक्ति देते हैं उस भावना के द्वारा यज्ञ करने की, वो भी भगवान कृष्ण। तो ये समझना चाहिए कि यज्ञ में कितने इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं वो ये हैं, पांच फीचर्स, और ये पांचों फीचर्स को भगवान श्री कृष्ण धारण किए हुए हैं। यज्ञ, यज्ञ पुरुष, यज्ञेश, यज्ञ भावना और यज्ञ भोक्ता। तो कहीं पर कोई लूप होल नहीं छोड़ा है इस श्लोक में। जैसे कि आजकल लोग पता नहीं यज्ञ के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं, क्रिकेटर्स के ऊपर यज्ञ कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू होने वाला है तो चलो यज्ञ, और उसमें आहुतियां डाल रहे हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स की। और मंत्र भी सब ओम सचिनाय नमः, इस प्रकार के मंत्र। तो ये सब सब बकवास, मतलब एक एक प्रकार से यज्ञ के ऊपर एक खिलवाड़ चल रहा है। तो ये है एक प्रिलिमिनरी नॉलेज यज्ञ का। अब जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन भी किया है, यज्ञ का अर्थ है सैक्रिफाइस, और जो हम समझते हैं जैसे कि हवन वगैरह जो हम कहते हैं, उसको प्रभुपाद ने ट्रांसलेट कैसे किया, फायर सैक्रिफाइस। तो उसको हवन को हम फायर सैक्रिफाइस कहेंगे, लेकिन यज्ञ जो है वो है सैक्रिफाइस। द लिटरल मीनिंग ऑफ यज्ञ इन इंग्लिश फॉर अस टू अंडरस्टैंड इज सैक्रिफाइस या त्याग। तो मैं डिक्शनरी में देख रहा था सैक्रिफाइस का लिटरल मीनिंग, बहुत सुंदर अर्थ दिया गया है डिक्शनरी मीनिंग, एन एक्ट ऑफ गिविंग अप समथिंग वैल्यूड फॉर द सेक ऑफ समथिंग एल्स रिगार्डेड एज मोर इंपॉर्टेंट और वर्दी। ये नहीं कि आपने कोई ऐसी फालतू चीज सैक्रिफाइस की है और उसको आप यज्ञ बोल सकते हो, नहीं। यहां पर डिक्शनरी ये कहती है कि गिविंग अप समथिंग वैल्यूड, यू कैन सिट समवेयर एल्स, कफिंग अ लॉट, नहीं आप उधर की तरफ पीछे बैठ जाइए। द एक्ट ऑफ गिविंग अप समथिंग वैल्यूएबल, जो कि आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, उसको आप त्याग रहे हो और भी उससे भी ज्यादा कुछ वैल्यूएबल और वर्दी और इंपॉर्टेंट को प्राप्त करने के, उसको कहते हैं सैक्रिफाइस और उसको कहते हैं यज्ञ। तो अब सैक्रिफाइस इन द मोड ऑफ गुडनेस, तो इस ट्रांसलेशन के अनुसार हम यदि देखें तो इस संसार में कोई किसी न किसी प्रकार से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सैक्रिफाइस कर ही रहा है। तो यदि सैक्रिफाइस इन द मोड ऑफ गुडनेस, जिसके अंदर डायरेक्टली आपका सैक्रिफाइस शास्त्र पर आधारित होता है, वो है सैक्रिफाइस इन द मोड ऑफ गुडनेस। जैसे कि आप लोग जो कुछ सैक्रिफाइस करके इस समय बैठे हो यहां पर, यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या आपने सैक्रिफाइस किया है आज के गीतामृत के कार्यक्रम के लिए, जनरली क्या क्या सैक्रिफाइस किया आपने? हाँ, टीवी, समथिंग वैल्यूएबल, टाइम, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, ठीक है, टाइम को सैक्रिफाइस किया और फिर यहां पर आप लोग आए, और क्या? जैसे कि एक जो इंद्रिय भोग इस संसार में, इंद्रिय भोग को वैल्यू दिया जाता है, तो उसे जैसे कि ये जैसे आपने टाइम कहा, तो टाइम को इंद्रिय भोग में कोई इस्तेमाल कर सकता है और पैसे कमाने में और फाइनली उसी के लिए इंद्रिय आरामो, जो भगवान ने 16वें श्लोक में कहा। तो इसलिए आप लोग सब जानते हैं कि बहुत कुछ आप सैक्रिफाइस करके यहां पे बैठे हुए, तो इसे कहते हैं क्योंकि यहां पर आप आए हो भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण के मंदिर में उनकी भगवद गीता से श्रवण करने के लिए। तो चाहे छोटी सी छोटी चीज हो कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसका कुछ प्लास्टिक चुभ रहा होगा आपको, तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं आप, है कि नहीं? आपको नींद आ रही होगी, कैसे तो अपने आप को जगाए रखा होगा आपने, भूख लग रही होगी लेकिन फिर भी आप बैठे हुए हो कि अभी टाइम नहीं हुआ, अभी काउंटर नहीं लगाया, अभी तक तड़के की आवाज भी नहीं आई। तो भूख प्यास को सबको सैक्रिफाइस करते हुए आप लोग यहां पे बैठे हुए, लेकिन आप कनेक्ट किसको कर रहे हो? आपके खुद, आपके मन को, आपके शरीर को कनेक्ट किससे कर रहे हो? यहां भगवत गीता से, शास्त्र से कनेक्ट कर रहे हो। इसलिए दिस इज सैक्रिफाइस इन द मोड ऑफ गुडनेस। तो शारीरिक रूप से आप कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो, मानसिक रूप से कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो। किसी ने कहा कि टीवी छोड़ के हम बैठे हैं, तो मानसिक रूप से मनोरंजन को छोड़कर यहां आए आत्मरंजन के लिए। हाँ, शरीर आराम से सोफे पे, आप वहां पर बेड पर, सोफे पर, घर पे, हाँ, लंबा होके लेट के टीवी देख सकते थे यहां पे, लेकिन आपको एक कुर्सी पर बैठना है, उसी में जितना पोजीशन चेंज करना है कर लो। और कई बार तो ज्यादा पोजीशन चेंज करोगे तो बगल वाला देखेगा, या क्या चल रहा है, हैंगिंग गार्डन में नहीं बैठे हैं। तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो सैक्रिफाइस किया है, लेकिन उसका नेक्स्ट जो फ्लिप साइड है, जहां पर आप अपने आप को कनेक्ट कर रहे हो, वो है शास्त्र, वो है भगवान। फिर लोग ये नहीं कि दूसरे मोड्स में सैक्रिफाइस नहीं करते, सैक्रिफाइस नाउ इन द मोड ऑफ पैशन। तो बेचारा जो कमा रहा है पैसे, पूरा परिवार कह रहा है आईफोन, आईपॉड, आईपैड, लेकिन वो क्या कहना है, उसको क्या कहना पड़ता है, खर्चा तो मुझे करना है, आईपैड। तो वो जो सैक्रिफाइस कर रहा है, इतना कमा रहा है, कमाने के बाद जो कुछ पैसे, लेकिन वो पैसों का इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है, ये सब चीजों में, जो कि डायरेक्टली शास्त्र से कनेक्टेड नहीं है। तो इसके पीछे जितना भी सैक्रिफाइस हो रहा है, टाइम, एनर्जी, फिर जो भी वो अलग अलग प्रकार से अपने ऐशो आराम को सैक्रिफाइस करके पैसे कमा रहा है, हम जानते हैं। तो वो जो जद्दोजहद कर कर, पापड़ बेल बेल कर, सुखा कर, सेक कर, तो वो एक सैक्रिफाइस है। तो वो है सैक्रिफाइस इन द मोड ऑफ पैशन। फिर सैक्रिफाइस इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, कि यहां पर सैक्रिफाइस इन द मोड ऑफ पैशन कम से कम शरीर निर्वाह के लिए चल रहा है, लेकिन सैक्रिफाइस इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, शरीर निर्वाह छोड़ दीजिए, शरीर को कष्ट देते हुए बिना मतलब, उसे कहते हैं सैक्रिफाइस इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। अब इसका जो बेसिक चार इंस्टिंक्ट्स हैं मनुष्य के, उससे कोई कनेक्शन नहीं है, दूर दूर तक कोई। बेसिक इंस्टिंक्ट्स किसे कह रहे हैं हम? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। शास्त्र तो छोड़ दीजिए, लेकिन शरीर निर्वाह के लिए भी जिसका कोई कनेक्शन न हो, वो जो प्रकार, अभी देखिए कितना सैक्रिफाइस किया जा रहा है इसके अंदर, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि, पता नहीं इसको आप जूते बोलोगे कि मोची ने बाकी सब निकाल दिया, खाली कील छोड़ दिया। तो ये सब आजकल, मतलब ये खाली सैंपल है मोड ऑफ इग्नोरेंस में जो सैक्रिफाइस चल रहा है, उसका खाली एक सैंपल है ये। तो अब यदि पूछा जाए कि एक विद्यार्थी परीक्षा लिख रहा है, तो परीक्षा लिखता हुआ ये विद्यार्थी, उसका सैक्रिफाइस किस प्रकार का है? अब देखिए कि हम लोग सब यहां पर बैठे हुए एक समय हम लोग भी विद्यार्थी थे, एक विद्यार्थी को आजकल कितने साल उस विद्यालय में, अलग अलग प्रकार के विद्यालय में, छुट्टियों में भी फिर कोचिंग क्लासेस चालू रहती है आजकल। पहले छुट्टियों में तो छुट्टी होती थी, छुट्टियों में आजकल विद्यार्थी ज़्यादा उसमें लगे रहते हैं, सैक्रिफाइस में। तो अब ये एग्जाम्पल हमने लिया है कि जैसे यदि यज्ञ को हम कहें कि यज्ञ के लिए आपको यज्ञ कुंड चाहिए, एक पुरोहित चाहिए, घी चाहिए आहुति देने के लिए, अग्नि चाहिए, मंत्रोच्चारण चाहिए, तो वैसे ही एक स्टूडेंट, उसके लिए पूरा एग्जामिनेशन हॉल एक यज्ञ कुंड है और वो आहुति किसकी दे रहा है, वो आहुति दे रहा है आंसर्स की, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आंसर्स की आहुति दे रहा है। कैसे दे रहा है, जैसे कि वो होता है ना घी डालने वाला चम्मच, तो वैसे उसका पेन, उसके पेन से, और वो जो स्याही है वो है घी, तो वो स्याही जैसे क्वेश्चन पेपर पूछा गया तो बस फिर वो आहुति देते हुए जो आंसर लिख रहा है, मतलब उसके लिए उसको वो आना चाहिए मंत्रोच्चारण, जो कि उस यज्ञ की एक प्रकार से जान है वो मंत्रोच्चारण। नहीं तो आजकल तो पंडित भी मंत्र वगैरह सब भूल जाते हैं, कुछ भी मंत्र चालू करते हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज, नारियल लो एक दूसरे की खोपड़ी में फोड़ दो, मतलब आगे का लाइन भूल गए तो लोगों को समझ में भी नहीं आता है। एक विद्यार्थी ने, वो बचपन में हमने सुना, विद्यार्थी ने लिख दिया, कुछ आता नहीं था, गाय हमारी माता है मुझको कुछ नहीं आता है, तो एग्जामिनर ने भी लिख दिया, बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। तो यदि एक विद्यार्थी का जीवन देखें तो विद्यार्थी का जीवन एक प्रकार से उसमें वो यज्ञ में लगा हुआ है। तो अब अगर हम यज्ञ या सैक्रिफाइस का ये प्रिलिमिनरी जो ट्रांसलेशन है, डेफिनेशन समझ लिए हैं, तो फिर हमारा हरेक कर्म हम यज्ञ में परिवर्तित कर सकते हैं। एवरी एक्टिविटी, पहले उसको देखना है कि सैक्रिफाइस कौन से मोड्स में है, उसको यदि तमोगुण है तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से ऊपर सत्वगुण और फिर शुद्ध सत्व तक उसको लेके आना है। ये एक मेरे को स्लाइड हाल ही में किसी ने भेजा था, देखो आजकल स्टूडेंट्स को क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है एग्जामिनेशन हॉल में। कि वो कॉपी ना करें, ये मेरे ख्याल से बर्मा या बांग्लादेश यहां कहीं का एक एग्जामिनेशन हॉल का फोटो है, वो घोड़ों को बांध देते हैं। तो ये फोर्स्ड जो श्लोक है व्यवसायात्मी का बुद्धि, अब पता नहीं इसमें वो कितने जगह हैं, प्रश्न ये है कितने जगह हैं उसके अंदर। तो क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है, अब प्रश्न अर्जुन पूछे कि आपने मुझे यज्ञ करने के लिए कहा है आज के श्लोक में, तो क्या मैं ये जो युद्ध, आप युद्ध लड़ने के लिए बोल रहे हो ना, तो क्या मेरा ये युद्ध लड़ना यज्ञ कहलाएगा? तो अब भगवान माइक्रोफोन आप लोग सबको दे रहे हैं, बोल आंसर करो। अर्जुन ने प्रश्न भगवान से पूछा और भगवान हमसे कह रहे हैं आंसर देने के लिए। वॉज अर्जुन परफॉर्मिंग यज्ञ ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र? क्या कहोगे आप, कैसे? वाई यस हाउ? हाँ, फाइट अगेंस्ट एनिमीज। तो जो भी शत्रु से युद्ध करता है वो यज्ञ कर रहा है फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा। ओके, वेरी मच राइट। तो हाँ, यदि हम वही एग्जाम्पल लें, जैसे एग्जामिनेशन हॉल का एग्जाम्पल लिया, तो पूरी कुरुक्षेत्र की रणभूमि यज्ञ कुंड बन गया। भगवान उत्तर कैसे दे रहे हैं? अर्जुन, तुम पूछ रहे हो कि तुम्हारा यह युद्ध लड़ना क्या यज्ञ कहलाएगा? हां, अवश्य। यह पूरी जो रणभूमि है कुरुक्षेत्र की, वो एक यज्ञ कुंड है। और ये जो तुम्हारे बाण हैं, वो घी डालने वाला चम्मच है। और उसमें तुम आहुति किसकी डाल रहे हो? ये दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, इनकी आहुति। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? मंत्र उच्चारण। तो किसका चिंतन कीर्तन करते समय तुमको ये आहुति डालनी है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार से जब तुम ऐसे यज्ञ में, ऐसे युद्ध में लगोगे तो वो यज्ञ कहलाएगा। तो यदि कोई हमें पूछे कि अर्जुन ऐसे नृशंस घोर युद्ध में कैसे लगे, अर्जुन जैसे भगवान के भक्त, तो हम क्या कहेंगे? नहीं, वो यज्ञ में लगे हुए थे, वो किसी युद्ध में नहीं लगे, यज्ञ में लगे हुए थे। अब एक अच्छा लेसन आज के श्लोक के संदर्भ में समुद्र मंथन लीला में सुखदेव गोस्वामी देते हैं। एक समुद्र मंथन की लीला आप लोग जानते होंगे कि दैत्य और देवता, देवता और दानव, ये दोनों समुद्र के मंथन के कार्य में लगे। और इनका उद्देश्य था कि अमृत उत्पादन करें। तो एक तरफ राक्षस, एक तरफ देवता, और वो मंदराचल पर्वत को लेकर वसुकी सर्प को उन्होंने रस्सी बनाई, और वो जैसे कि मंथन गांव में करते हैं दही का, रस्सी बांधकर मथनी को रस्सी बांध, तो वैसे मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और वसुकी सर्प को रस्सी बनाया। क्योंकि एक तो बड़े बड़े दैत्य और देवता, तो इतनी शक्ति इनके अंदर थी, फिर भी भगवान की सहायता थी। नीचे भगवान कूर्म के रूप में उसे लिए हुए थे, मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर। तो ये सुंदर श्लोक है समुद्र मंथन लीला के अंत में सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक कहते हैं। एवं सुरा सुरगणा समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पा तत्रामृतम सुरगणा फलमंजसापुर यत्पाद पंकज रज श्रेणान्न दैत्य। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी बहुत ही एक सुंदर एनालिसिस प्रस्तुत कर रहे हैं। वो ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि छह चीजें समान थी समुद्र मंथन के समय। सम, सम का अर्थ है समान। तो छह चीजें समान थी, लेकिन फिर भी फले विकल्पा, फल थोड़ा विकल्पित कैसे हुआ कि एक को अमृत मिला, एक पार्टी को अमृत मिला, एक पार्टी को नहीं मिला, जबकि कर्म से संबंधित जो छह क्रियाएं हैं, सिक्स एस्पेक्ट्स ऑफ अ कर्म वर ऑल सेम फॉर द डीमंस एंड द डेमिगॉड्स। सो व्हाई द रिजल्ट वाज अदरवाइज, व्हाई द रिजल्ट सीम टू बी पार्शियल एंड बायस्ड, ये क्वेश्चन सुखदेव गोस्वामी पूछ रहे हैं और फिर वो उसका आंसर भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी छह समानताएं। सबसे पहले वो कहते हैं एवं सुरा असुर गणा, सुर और असुर, सम देश, देश उनका एक ही था, एक ही जगह पर वो लोग मंथन कर रहे थे। ऐसा नहीं कि देवता अपने लोक में मंथन कर रहे थे, राक्षस अपने लोक में कर रहे थे, इसलिए देवताओं को अमृत मिला, राक्षसों को नहीं मिला। द प्लेस ऑफ चर्निंग वॉज सेम। सेकेंड, द टाइम, काल फॉर द चर्निंग ऑफ द मिल्क ओशन वॉज द सेम। ऐसा नहीं कि देवताओं ने कुछ अच्छा मुहूर्त ढूंढा था इसलिए उनको अमृत मिला, राक्षसों ने गलत मुहूर्त पे मंथन किया, नहीं, साइमल्टेनियसली टाइम भी एक ही था, प्लेस भी एक ही था। फिर साधन, दोनों के लिए साधन भी कॉमन था, वसुकी और मंदराचल। साधन दोनों ने, ऐसा नहीं कि अलग अलग साधन इस्तेमाल किए थे, साधन भी एक ही। अर्थ, अर्थ का मतलब है कि जब मंथन चल रहा था तो बहुत सी जड़ी बूटियां डालनी पड़ रही थी उस अमृत के उत्पादन के लिए, तो दोनों तरफ से इक्वल क्वांटिटी और क्वालिटी वो जड़ी बूटियां डाली गई थी। मतलब ये अर्थ, ये बोल सकते हैं आजकल कोई बिजनेस चालू करता है तो कैपिटल जो डालता है, पैसा डालेगा फिर निकलेगा ना, पैसा इन्वेस्ट करेगा फिर उसमें से पैसा उसको प्रॉफिट मिलेगा, तो अर्थ वो सब जो जड़ी बूटियां सेम, क्वांटिटी क्वालिटी वो भी सेम। फिर कर्म, जो एक्ट ऑफ चर्निंग, दोनों तरफ से एक समान। अब देखिए, एक तरफ से वो खींच रहे हैं, एक तरफ से राक्षस खींच रहे हैं, एक तरफ से देवता खींच रहे हैं, तो दोनों का जो फिजिकल एक्सर्शन, लेबर जो है वो भी समान था। ऐसा नहीं कि देवताओं ने ज्यादा एक्सर्शन किया था और राक्षसों ने कम किया था इसलिए देवताओं को मिला, नहीं, इक्वल दोनों का कर्म का जो कैपेसिटी और क्वांटिटी था सेम था। और फिर मति, दोनों के मन में मति क्या थी कि अमृत यहां से निकले। तो ये छह चीजें समान, एवं सुरा सुरगणा, सम देश काल हेतु अर्थ कर्म मत। लेकिन फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं फले विकल्पा, लेकिन फल कुछ दूसरा ही निकला। तब फिर उसका उत्तर देते हैं, तत्रामृतम सुरगणा फलम अंजसापुर। एक चीज डिफरेंस इन दोनों में था, वो क्या था, यत्पाद पंकज रजह श्रेणान। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों की शरण केवल देवताओं ने ली थी, न दैत्य, दैत्यों ने नहीं ली थी। तो डिफरेंस कहां हो गया, सब कुछ समान, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट कर्म किसके लिए करना है, जो आज का श्लोक क्या है, यज्ञार्थात कर्मणो, कि सब कुछ सेम होगा एक भौतिकतावादी व्यक्ति का और एक कृष्ण भक्त का, लेकिन जिसने भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर अपना जीवन किया है और ये दैत्यों ने नहीं किया था इसलिए फले विकल्पा हो गया। तो बहुत सुंदर श्लोक है ये आठवें स्कंद से, जिसके अंदर आज के श्लोक में जो भगवान बता रहे हैं कि यज्ञ कर्म क्या है और कर्म बंधन क्या है। वो कर्म के स्वरूप से, कर्म के क्वांटिटी से, जगह से, काल से, उस पर निर्धारित नहीं होता। किस पर निर्धारित होता है कि फाइनली वो अर्पित किसको हो रहा है। तो अब ये प्रश्न कोई पूछ सकता है कि शरीर यात्रा के कर्म यज्ञार्थ कर्म कैसे बन सकते हैं, क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने शरीर यात्रा के विषय में कहा कि उसके शरीर निर्वाह के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा, तो फिर वो यज्ञार्थ कैसे हो सकते हैं। तो अब इसके लिए हम सबसे पहले कर्म की तुलनाएं चार चीजों से की गई है। सबसे पहले कर्म की तुलना दूध से की है, फिर एक चाबी से की है, दरवाजे से की है और अग्नि से की है। तो श्रीमद् भागवत में ये बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति ज्यादा दूध पीने के वजह से उसको दस्त लग जाते हैं, है ना, कोई ज्यादा दूध पी ले तो दस्त लग जाते हैं, तो जो वैद्य होते हैं वैद्य क्या बोलते हैं, दही पियो। वो बोले अरे दही तो दूध से ही तो बनता है, दूध पीने से ही तो मेरे को दस्त लगे। वही दूध दही में परिणित कर कर औषधि के रूप में दिया जाता है। तो कर्म की तुलना दूध से या दही से की गई है कि वही कर्म उसमें आप कल्चर डालो। जैसे दूध में क्या डालते हैं दही बनाने के लिए, उसको इंग्लिश में कल्चर बोलते हैं, विरजन। तो उसको कल्चर बोलते हैं। तो कल्चर डालने से उसके प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज हो जाते हैं, अभी वो जब दूध वो दही बन गया, जैसे बोलते हैं ना व्हाट इज मिल्क एंड व्हाट इज योगर्ट। मिल्क स्लीपिंग एट नाइट मॉर्निंग बिकमिंग टाइट। तो वही दूध सुबह एकदम टाइट हो जाता है, वैसा वाला टाइट नहीं। सो मिल्क स्लीपिंग एट नाइट मॉर्निंग बिकमिंग टाइट। अब वो जो दूध टाइट होकर दही बन गया है, अब उसकी आप खीर नहीं बना सकते, चाय नहीं बना सकते उसकी, तो उसके प्रॉपर्टीज चेंज हो गए। तो यहां पर वही कर्म लेकिन उसके अंदर यदि कल्चर, किसका, कृष्णा कॉन्शियस कल्चर डाल दिया जाए, सो दैट सेम मिल्क कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड एंड कैन एक्ट लाइक मेडिसिन। सो द सेम कर्म कैन एक्ट लाइक मुक्ति फ्रॉम कर्म बंधन। जैसे वो दही उस डिजीज से मुक्ति दिला सकता है, उसी प्रकार से वही कर्म जो कि यज्ञार्थ के रूप में किया जाए, यज्ञ के अर्थ के रूप में किया जाए, तो कर्म के बंधन से मुक्त कर सकता है। दूसरा एग्जाम्पल चाबी का है, सिंपल एग्जाम्पल है। वही चाबी से ताला बंद होता है, वही चाबी से ताला खुलता है। ऐसा नहीं कि खोलने के लिए दूसरी चाबी लानी पड़ती है, नहीं, लॉक करने के लिए भी वही चाबी होती है, अनलॉक करने के लिए भी वही चाबी। उसी प्रकार से कर्म हमको फेंकना नहीं है, चाबी को फेंकना नहीं है, कर्म को छोड़ना नहीं है, उसको सही तरीके से घुमाना है। कई होते ना आप उल्टा घुमाते ज्यादा बंद होते रहते, कई ऐसे दरवाजे होते हैं डबल लॉक ट्रिपल लॉक, आपको लग रहा है खुल रहा है बंद हो रहा है बंद हो रहा है। तो कई लोगों को लगता है कि मैं ये कर्म किए जा रहा हूं किए जा रहा हूं किए जा रहा हूं, और बनते जा रहे और लॉक होते जा रहे संसार में। तो चाबी एक तो होता ना, कई लॉक होते हैं वो चाबी और उसका नंबर एक ही होता है, लॉक पर भी नंबर होता है चाबी पर भी नंबर होता है, तो वो मैचिंग होना चाहिए। तो शास्त्र बताते हैं कि सबसे पहले मनुष्य शरीर तुमको जो दिया है उसकी चाबी ढूंढो, उसको अनलॉक करना है तो शास्त्र बताते हैं, चाबी भी देते, नंबर सेम होना चाहिए, मैचिंग होना चाहिए। उसके बाद में शास्त्र ये भी बताते हैं कि कौन से डायरेक्शन में घुमाना है, उल्टे डायरेक्शन में घुमाओगे वही शास्त्र को यदि कोई मिसयूज करता है तो अपने आप को लॉक कर रहा है, वही शास्त्र को प्रॉपरली यूज करता है तो अनलॉक कर रहा है। तो कर्म इस चाबी के समान बताया गया। एक और सिंपल एग्जाम्पल दरवाजे के समान है कि दरवाजा एंट्री और एग्जिट दोनों के लिए इस्तेमाल होता है ना। जैसे यहां पर इतने सारे दरवाजे, आप लोग सब दरवाजे से अंदर आए और बाहर जाने के लिए, ऐसा नहीं कि आप ऊपर से फोड़ के जाएंगे, मत करना है ऐसे। कहां से जाओगे वापस बाहर, वहीं से वापस बाहर जाओगे। So just like a door can act as entry and exit both. Similarly, karma can make a living entity enter in this material world and also exit from this material world. Like door. Entry, exit, both. Dual purposes. Or antim udharan, karma is like fire. Jaise ki hum log roz bhojan jo khate hain, wo agni pakati hai usse. Dal, chawal, sabzi, agni usko pakati hai. तो जो भोजन हम इस शरीर के अंदर डाल रहे हैं, इस शरीर को चलाने के लिए है कि नहीं, क्या फ्यूल ये शरीर का, ये भोजन रोज इसमें फ्यूल डालते हैं, तो ये फ्यूल ये कहां पर बनता है, ये अग्नि उसको अच्छी से पकाती है, तब जाकर ये हमारे लिए पौष्टिक बनता है. अब यही शरीर जब खत्म हो जाता है, मृत्यु होती है, तो वही फायर एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है इस शरीर को जलाने के लिए. तो ये दो शब्द हिंदी के हैं, इस पर ध्यान दीजिए. एक शब्द है जलाना, एक शब्द है जिलाना. समझ में आया आपको? जिलाना और जलाना. तो अग्नि खाना पकाकर हमारे शरीर को जिला रही है, और मृत्यु के समान, मृत्यु के समय वही अग्नि इस शरीर को जलाएगी. अग्नि वही है. तो कर्म भी उसी प्रकार से है कि कर्म जब हम यज्ञ अर्थ के अनुसार करें, यज्ञ के लिए करें, यज्ञ के समान करें, तो वो हमें जिलाएंगे, नहीं तो जलाएंगे. पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार चिता में जलना पड़ेगा उसके वजह से. तो समझ में आया कर्म कि अभी यहां पर निष्कासित नहीं किया हुआ कर्म को. जैसे कि ये हर एक पदार्थ को जो एग्जांपल्स हमने लिए उसको निष्कासित नहीं किया, उसको सही उसका यूजेज बताया गया है. तो अब जो ये प्रश्न कि शरीर निर्वाह के लिए जो भगवान ने पिछले श्लोक में कहा, वो छोड़ नहीं रहा है प्रश्न, लेकिन फिर भी शरीर यात्रा पिचते, शरीर यात्रा के लिए जो भगवान ने कहा, तो उसको भी ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग को स्पिरिचुअलाइज किया जा सकता है, उसको यज्ञ बनाया जा सकता है भगवान कह रहे हैं. तो शास्त्र के कुछ उदाहरण हम लेंगे. यदि ईटिंग को लें तो एग्जाम्पल है शबरी का, कि शबरी ने कैसे यज्ञ किया. अपने फोर बेसिक इंस्टिंक्ट्स में से एक इंस्टिंक्ट को कर्म में लाते हुए यज्ञ कैसे किया, कि उन्होंने वो बेर चखे लेकिन प्रभु श्री राम के लिए. कॉन्शियसनेस क्या था? विष्णु की प्रसन्नता कि उनको मीठे बेर मिलने चाहिए. सो ऑल्दो इट वॉज सीन दैट शबरी वॉज एंजॉइंग अपरेंटली दोज बेरीज, बट द कॉन्शियसनेस वॉज इन दैट ईटिंग ऑल्सो शी वॉज परफॉर्मिंग यज्ञ. श्रीमद् भागवत में स्लीपिंग का उदाहरण है महाराज मुचकुंद. तो देवताओं ने उनका एक बार युद्ध हुआ राक्षसों से, तो देवताओं ने महाराज मुचकुंद को बुलाया हेल्प के लिए. तो महाराज मुचकुंद दिन रात देवताओं की इतनी मदद उन्होंने की और देवता जीत गए. तो देवताओं ने फिर महाराज मुचकुंद को पूछा कि आप क्या वरदान चाहेंगे. महाराज मुचकुंद ने कहा मुझे सोना है, आई वॉन्ट टू स्लीप. तो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में मुचकुंद की कथा है कि कोई शुद्ध भक्त ये कैसे मांग सकता है. अभी देवताओं ने वरदान मांगा तो वो ये क्या मांगे कि मुझे सोना है, आई वॉन्ट टू स्लीप. अरे क्या कुछ नहीं मांग सकते थे वो देवताओं से. हमारे आचार्य कहते हैं कि महाराज मुचकुंद अपनी भगवान की भक्ति के जो उनकी क्रियाएं हैं वो छोड़कर आए हुए थे, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे. तो देवताओं की सहायता करने के लिए वो छोड़कर आए हुए थे. तो उनको ये लगा कि मैं जो इतना अब दिन रात बिना सोए खाए पिए जो मैंने ये युद्ध किया है, तो वापस मैं भगवान की सेवा में उस कॉन्शियसनेस में नहीं लग पाऊंगा। इसलिए मैं पहले सोना चाहता हूं ताकि उठने के बाद मैं भगवान की भक्ति सचेत तरीके से ध्यानपूर्वक कर सकूं। तो प्रभुपाद जो कहते हैं कि इवन व्हेन अ डिवोटी इज स्लीपिंग कैन स्लीप, हिज स्लीपिंग कैन बिकम यज्ञ। ये अच्छा लग रहा होगा। If he is sleeping in that consciousness that I am sleeping, my dear Lord, so that when I wake up tomorrow morning, first of all, if I wake up the next morning, I wake up fresh for you, for your service. इसलिए महाराज मुचकुंद जब सोए हुए थे तो भगवान श्री कृष्ण उनके इस consciousness को जानते हुए भगवान स्वयं पहुंच गए वहां पर। सोचिए महाराज मुचकुंद की ऐसी मंगल आरती कि भगवान पहुंचे वहां पर और भगवान ने उठाया, कोई अलार्म क्लॉक नहीं, भगवान ने उठवाया महाराज मुचकुंद को। तो ये एग्जाम्पल है कि कैसे स्लीपिंग वॉज यूज इन कृष्णाज सर्विस। मेटिंग, थर्ड कैंटो में एग्जाम्पल है कर्दम मुनि और देवहूति। तो अब कर्दम मुनि तो बहुत बड़े विरक्त, वो तो कितने सालों से बस तपश्चर्या में लगे हुए थे। फिर स्वयंभुव मनु इनकी पुत्री देवहूति के साथ जब उनका विवाह हुआ तो इतने बड़े राजा की वो राजकुमारी देवहूति। तो कर्दम मुनि तो अपने उसी वैरागी जीवन का ही वो व्यवहार कर रहे थे, लेकिन फिर जब उनको एहसास हुआ कि मैं गृहस्थ हूं, मेरी शादी हो गई अभी, तब फिर उन्होंने माता देवहूति के संपर्क में आकर जो पुत्र उत्पत्ति की, ये श्रीमद् भागवत में बताया कि उन्होंने एक उस वो माहौल को क्रिएट करने के लिए एक एरियल मैंशन, उड़ता हुआ महल ऐसा बनाया, हम ये कह सकते हैं कि उनके हनीमून के लिए। लेकिन किस कॉन्शियसनेस में सब कुछ किया कि उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ, साक्षात भगवान कपिल देव वो उनके पुत्र बने। तो थर्ड कैंटो में एग्जाम्पल है हाउ कर्दम मुनि एंड देवहूति दे यूनाइटेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड बिगॉट नॉट सम चाइल्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस बट कृष्ण हिमसेल्फ। और डिफेंडिंग हमारे अर्जुन फिर से, जो कि अल्टीमेट डिफेंस आर्म्ड फोर्सेस में थे, लेकिन क्या क्या डिफेंड किया उन्होंने, उन्होंने धर्म को डिफेंड किया। तो ये अगर ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग भी लें तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे शरीर निर्वाह करने के लिए यदि कोई चार कार्य कर रहा है तो वो भी स्पिरिचुअलाइज कर सकता है, उसको भी यज्ञ में परिवर्तित कर सकता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ये चार बेसिक इंस्टिंक्ट्स में कैसे ये लोग यज्ञ में लगे हुए थे। अब भगवान जो आज के श्लोक में कर्म बंधन के विषय में कह रहे हैं तो उस पर हम विचार डालेंगे थोड़ा। तो अर्जुन का ये प्रश्न था कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। हाँ, तो इसका उल्टा क्या है, अर्जुन क्या करना चाहते थे, सौम्य कर्म, है ना। घोर कर्म का उल्टा है सौम्य कर्म। तो अर्जुन ने जब इस अध्याय की शुरुआत में यह प्रश्न पूछा तत्किम कर्मणि घोरे माम, भगवान आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो जब आपके अनुसार बुद्धि सकाम कर्म से ऊंची है। तो अब इसका उदाहरण लेंगे कि घोर कर्म और सौम्य कर्म डिफाइन कैसे होता है। फले विकल्पा, श्लोक याद है, फल के ऊपर। तो सबसे पहले यदि घोर कर्म के संदर्भ में हम रामायण में वानर सेना, प्रभु श्री राम की जो वानर सेना, तो वानर सेना किस में लगी हुई थी, वो लंका में कोई फ्रूट्स खाने नहीं गए थे उधर, कि देखते हैं रावण के महल में फ्रूट सलाद कैसा मिलता है। घोर युद्ध चल रहा था, खून खराबा, पूरी वानर सेना उस घोर युद्ध में लगी हुई थी। तो वानर सेना युद्ध में लगी हुई, उस घोर कर्म में लगी हुई बाहरी रूप से, लेकिन फल क्या हुआ, सारे अयोध्या पहुंचे, भगवान श्री राम के वैकुंठ धाम को प्राप्त किए। यही नहीं, अगले युग में भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन धाम में वो वानर, दामोदर लीला में जो भगवान दामोदर वानरों को खिला रहे थे वो माखन और दही, तो एक कारण ये था कि भगवान ने उनको वादा दिया था, किसने, भगवान श्री राम ने, कि मेरे अगले अवतार में तुमने जो इतनी तपस्या मेरे लिए की है रावण की सेना के साथ लड़ते समय, तो उसका मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा माखन खिलाते हुए, वो भी ब्रज का मेरे हाथों से। तो देखिए क्या रिजल्ट क्या मिला। तो कौन कहेगा कि ये घोर कर्म में लगे थे, नहीं, रिजल्ट से पता लगता है, फले न परिचयित। अब सौम्य कर्म का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो भरत महाराज, भरत महाराज ऐसे सौम्य कर्म में लगे थे कि हिरण की देखभाल करना, हम वो कथा जानते हैं, वो ध्यान में चले गए वन में पूरे पृथ्वी का जो राज्य छोड़कर, और ऐसे सत्वगुणी अवस्था में भगवान की भक्ति करते हुए जब उन्होंने एक हिरण, गर्भवती हिरण को मरते हुए देखा, शेर ने आक्रमण किया उस गर्भवती हिरण ने, हिरण को पैदा कर वो मर गई, तो भरत महाराज वो छोटे से हिरण की देखभाल करने लगे। इसे आप क्या कहोगे, सौम्य कर्म ना? कितना सौम्य कर्म है, छोटे से हिरण की देखभाल करना, उसके पाल पोस कर बड़ा करना, जो उसको क्या खाने के लिए चाहिए, कहाँ सुलाना उसको, सब कुछ। कितना, एक कोई बाहर से कोई अगर देखेगा कि वानर किसमें लगे हुए थे और भरत महाराज किसमें लगे हुए थे, तो क्या कहेगा, कितना कंपैशन था भरत महाराज के अंदर। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, वानर तो गए वैकुंठ, भरत महाराज बने हिरण। तो जो जानवर थे वो वैकुंठवासी बन गए, और जो भरत इतने बड़े राजा मनुष्य थे वो जानवर बन गए। तो अब कौन सा घोर कर्म है, कौन सा सौम्य कर्म है? तो इसलिए अर्जुन ये जो घोर कर्म को लेकर बैठे हुए हैं, भगवान समझा रहे हैं कि मेरे लिए किया गया कर्म वो यज्ञ है, और ऐसा यज्ञ करने से वो सबसे सौम्य से भी ऊपर, सौम्यतम, सौम्यतर नहीं, सौम्यतम कर्म होगा वो। तो तीन प्रकार के कर्म बंधन भगवद गीता में 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अनिष्ट, इष्ट और मिश्र, ये तीन प्रकार के कर्म बंधन हैं। तो इतना मुश्किल नहीं समझना, टेंशन में मत आइए आप। अनिष्ट कर्म बंधन है तमोगुण में जब कोई कर्म किया जाता है, अज्ञान में जब कोई कर्म किया जाता है तो वो है अनिष्ट कर्म बंधन। इष्ट जो कि सतोगुण में किया जाता है, उसमें भी बंधन है, जैसे कि भरत महाराज ने सत्वगुण में जो किया बंधन था उसके अंदर। और मिश्र है दोनों, मिश्रा जी किसमें, सत्वगुण में, रजोगुण में, तो दोनों का मिश्रण, जैसे एक पियक्कड़ वो बियर बार से बाहर निकला एकदम असली में टाइट, एकदम टोन रात के 1 बजे ठीक से चल नहीं पा रहा है, उसके अनुसार सारी दुनिया हिल रही है, वो ठीक चल रहा है, तो कैसे तो करके बाहर निकला, हमारे पांडू हवलदार पकड़े उसको रात के 1 बजे, कहाँ जा रहा है साहब, साहब आप गलत मत समझना, प्रवचन सुनने जा रहा। बोला रात के 1 बजे प्रवचन सुनने जा रहा है। बोला हाँ साहब बहुत अच्छा टॉपिक है, आप भी चलो। बोला क्या, कौन सा टॉपिक, रात के 1 बजे कौन से टॉपिक पे प्रवचन सुनने जा रहा है? दारू पीने के दुष्परिणाम। मैंने पूछा अच्छा प्रवचन दे कौन रहा है? मेरी बीवी देगी अभी। तो इसको कहते हैं मिश्रित कॉन्शियसनेस, कि हालांकि पूरे तमोगुण में दारू पीकर बाहर आ रहा है लेकिन प्रवचन की बातें कर रहा है। तो ये एक तीसरा प्रकार का कर्म बंधन। तो ये भगवान भगवत गीता में 3 प्रकार के कर्म बंधन बताए हैं। तो अब आज के श्लोक में भगवान कहे हैं लोको अयम कर्म बंधन। तो लोको अयम का अर्थ क्या है? यह लोक अर्थात मनुष्य जीवन। तो विशेष रूप से भगवान लोको अयम ये 2 शब्द इस्तेमाल करते हुए अर्जुन को बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन जो मिला है तुमको और जितने भी मनुष्य हैं उनके लिए ये शब्द हैं लोको अयम। तो इसे हम कैसे समझें, मनुष्य शरीर और अन्य शरीर। तो हम लोगों का जो मनुष्य शरीर है और मनुष्य शरीर के अलावा अन्य शरीर कौन कौन से हैं, जैसे पेड़ इत्यादि, जीव जंतु, जानवर, पक्षी और देवता। देवता वो मनुष्य से ऊंचे हैं और ये सारे पशु पक्षी मनुष्य से नीचे और हम मनुष्य बीच में। तो देवता हमसे ऊपर, पशु की योनियां हमसे नीचे। तो लोको अयम का अर्थ हुआ, भगवान कह रहे हैं कि केवल मनुष्य शरीर को कर्म योनि कहा गया है, बाकी अन्य जो शरीर हैं जो हमसे ऊपर हैं जो हमसे नीचे दोनों भोग योनि है। क्योंकि दोनों किस में लगे हैं? आहार निद्रा भय मैथुन। देवता भी उसी में लगे हुए हैं और पशु भी उसी में लगे हुए हैं। ये खाली हम मनुष्य हैं जो कि कर्म में लगे हुए हैं। जैसे कि आचार्य कहते हैं कि भगवान की भक्ति सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से हम लोग मनुष्य इस मृत्यु लोक पर कर सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग में केवल भोग विलास, नरक में केवल यातनाएं। तो वहां पर जो नरक में कुंभी पाक में जलाया जा रहा है, अलग अलग प्रकार में उनको यातनाएं दी जा रही, वहां पर किसी को माला दो चैंटिंग करो, उधर बैठ के कढ़ाई में पकौड़े की तरह चल रहा है, उधर क्या चैंटिंग करेगा वो भी बिना बेसन के जलाया जाता है। तो नरक में वहां पर कोई भक्ति नहीं पॉसिबल। स्वर्ग में जहां पर सोमरस है, अप्सराएं हैं, वहां पर किसी को जाके माला दो, बोले पागल हो गए। तो फिर ये जो हम लोग अयम लोके, भगवान क्या कह रहे हैं, अयम लोके, यहां पर सबसे ज्यादा अनुकूल है भगवान की भक्ति करना। क्यों अनुकूल है? बिकॉज देर इज सफिशियंट कंफर्ट टू डू भक्ति एंड सफिशियंट डिस्कंफर्ट नॉट टू सेटल हियर। ये दोनों परफेक्ट कॉम्बिनेशन है यहां पर। जैसे कि आप लोग कुर्सी पे बैठे हो, देर इज सफिशियंट कंफर्ट ऑन दिस चेयर दैट यू वोंट फॉल डाउन, बट इट्स नॉट सो कंफर्टेबल दैट आप सब घर बार बेच के कुर्सी पे रहोगे जिंदगी भर, इतना भी कंफर्टेबल नहीं है। तो ये है मनुष्य अयम लोके, भगवान जो बोल रहे हैं। तो इसलिए ये जो ह्यूमन फॉर्म है हमारा, इसकी तुलना ट्रेन के जंक्शन से की। जैसे ट्रेन का जंक्शन होता है, उसमें कितने अलग अलग प्रकार से पटरियां यहाँ जा रही हैं, वहां जा रही हैं, तो सिग्नल के अनुसार और ट्रेन का डेस्टिनेशन कहाँ है उसके अनुसार वो पटरी वहां पर बदल सकते हैं। सिमिलरली ह्यूमन फॉर्म इज लाइक द जंक्शन जहां से हम ऊपर देवता लोक तक जा सकते हैं या नीचे पशु की योनि में जा सकते हैं या ये सब को पार करते हुए हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। अब फिर भगवान आज के श्लोक में कह रहे हैं तदर्थम। तदर्थम का अर्थ है उसके लिए। अब उसके लिए मतलब भगवान ने श्लोक की शुरुआत कैसे की थी, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम। तो पहले से ही भगवान ने यज्ञ का अर्थ विष्णु कह दिया है, तो फिर थर्ड लाइन में जब तदर्थम कहा है तो मतलब उन विष्णु के लिए, ये नहीं समझना चाहिए अभी तो उसके लिए मतलब कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कर्म करो। तो कोई कहेगा तद अर्थम मतलब अर्थ के लिए, पैसों के लिए करो, नहीं इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए, उसके लिए मतलब भगवान के लिए। तो अब भगवान इस श्लोक में अंत में कह रहे हैं मुक्त संग समाचर। तो हम ये तीन मुख्य आज के श्लोक के जो शब्द भगवान ने कहे, यज्ञ, मुक्त संग और समाचर, तो इसमें समझ में आएगा कि कर्म की परिभाषा भगवान के अनुसार आज के श्लोक में क्या दी गई। तो यज्ञ, समाचर और मुक्त संग, इन तीनों का अर्थ हम अगर देखें तो यज्ञ का अर्थ दिया गया है श्री कृष्ण के लिए किए गए कर्म, कृष्णार्पित कर्म, वो है यज्ञ। फिर समाचर का अर्थ है सम्यक आचरण, कि वो कर्म सही आचरणों के द्वारा किया जाए अच्छी प्रकार से, मतलब गुड एक्टिविटी। और मुक्त संग भगवान जो कह रहे हैं मतलब आसक्ति रहित। तो भगवान ने पूरा ऑलराउंड अटैक किया है कि कोई भी लूपोल नहीं छोड़ा है, कि कर्म सही आचरणों के द्वारा किया जाना चाहिए, आसक्ति के रहित किया जाना चाहिए, और फिर यज्ञ के रूप में श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए करना चाहिए। तब फिर भगवान अर्जुन को कौन्तेय शब्द से संबोधित कर रहे हैं कि अर्जुन अपनी माता की ओर देखो कुंती, कि जब पांडु जो उनके पति थे उनका देहांत हुआ तो माद्री जो दूसरी पत्नी थी उसने, वो तो उनके पति के चिता में सती बन गई। तो माद्री के दो पुत्र कौन, नकुल और सहदेव, और कुंती माता इनके तीन पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। तो माता कुंती ने ये तीनों यज्ञ, मुक्त संग और समाचर, ये तीनों का पालन करते हुए पांचों पुत्रों की परवरिश की, अकेली विधवा स्त्री ने पांचों पुत्रों की परवरिश की। ऐसा नहीं कि नकुल सहदेव तो माद्री के हैं तो चलो इनको जैसे सौतेली मां कोई होती है, नहीं, उनको भी उतना ही प्रेम, उससे ज्यादा प्रेम दिया। तो यहां पर जब भगवान समाचर कह रहे हैं तो कोई व्यक्ति ये पूछ सकता है कि ठीक है अर्जुन ने भगवान के प्रेशर में आके युद्ध कर दिया होगा, मन दिल पे पत्थर रख के युद्ध कर, नहीं, भगवान कह रहे दिल पे पत्थर रख के नहीं युद्ध करना है, समाचर सम्यक आचरण के तुम्हारा रूप में, मतलब अच्छी तरीके से मन लगाकर युद्ध करना है। समाचर का अर्थ एक और क्या है, मन लगाकर, जैसे कुंती ने मन लगाकर नकुल और सहदेव की भी परवरिश की, बर्डन समझकर नहीं। तो यज्ञ या कर्म यज्ञ वो नहीं कि बर्डन समझ के किया जाए, ये भगवान कह रहे हैं। इसलिए कौन्तेय पुकारा अर्जुन को। तो अब इतने हम यज्ञ की चर्चा की आज के श्लोक में, तो सुनते हैं कि भगवद गीता में ही टॉप मोस्ट यज्ञ क्या रिकमेंड किया है भगवान ने। तो 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं महर्षिणाम भ्रूर अहम गिराम अस्म्यकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी स्थावराणाम हिमालय ऑफ द ग्रेट सेजेस आई एम भृगु ऑफ वाइब्रेशंस आई एम द ट्रांसेंडेंटल ओम ऑफ सैक्रिफाइसेस आई एम द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे एंड ऑफ द इमूवेबल आई एम द हिमालयस। तो जप यज्ञोस्मी, भगवान कह रहे हैं कि सभी योग्यों में सर्वश्रेष्ठ है जप यज्ञ। और हरिदास ठाकुर इनका उदाहरण है कि जब वो वैश्या हरिदास ठाकुर के पास आई, उनके समक्ष, हरिदास ठाकुर को कर्म बंधन में डालने के लिए। तो हरिदास ठाकुर ने क्या किया, कर्म बंधन छोड़ दीजिए, यज्ञ में लगाया। किसको? उस वैश्या को। कौन से यज्ञ में लगाया? यज्ञों में जो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं हूं जप यज्ञ, तो उस वैश्या को भी जप करने में हरिदास ठाकुर ने लगाया। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि इस कलयुग में यदि हमें कर्म बंधन से मुक्त होना है, तो हरिदास ठाकुर जो कि नामाचार्य, वो बता रहे हैं कि यदि एक वैश्या अपने कर्म बंधन से मुक्त होकर जप यज्ञ में लग सकती है, या जप यज्ञ के वजह से अपने कर्म बंधनों को काट सकती है, तो हम कलयुग के जो निवासी हैं, हमारे लिए एकमेव यज्ञ क्या निर्धारित किया गया है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब तक कि हम हरे कृष्ण महामंत्र के जप कीर्तन में नहीं लगते, तब तक हम आज का जो श्लोक है, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, अन्यत्र कर्मों में लगे हैं, यज्ञ के अर्थ में नहीं लगे, तब फिर कर्म बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। तो ये जो भगवान ने यज्ञ के विषय में आज कहा, और इस दसवें अध्याय में जो यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ, या भगवान स्वयं कहते हैं अपने आप को कि मैं हूं वो अस्मि यज्ञ, वो क्या है? जप यज्ञ। तो टेक होम मैसेज, इतना सब कुछ आपने सुना होगा, सुना तो प्रश्न है कि संक्षिप्त में बताइए कि क्या था आज का लेक्चर। तो कर्मा बिकम्स यज्ञ, भगवान आज के लेक्चर में क्या बता रहे हैं कि कर्म को कैसे यज्ञ बनाओ। तो तीन चीजें बस इसको ध्यान में रखिए आप, कर्मा बिकम्स यज्ञ व्हेन दैट कर्मा इज प्रॉपर, प्रॉपर वर्क डन फॉर प्रॉपर पर्सन। हु इज अ प्रॉपर पर्सन? यज्ञेश यज्ञ पुरुष, यज्ञ भोक्ता श्री कृष्ण, एंड फाइनली इन प्रॉपर कॉन्शियसनेस। सो व्हाट इज द टेक होम मैसेज फॉर एवरीवन टुडेज श्लोका? कृष्ण इज सेइंग ट्रांसफॉर्म योर कर्म इनटू यज्ञ, डोंट गिव अप कर्म, ट्रांसफॉर्म इट इनटू यज्ञ। हाउ डू यू डू दैट? प्रॉपर वर्क डन फॉर द प्रॉपर पर्सन इन प्रॉपर कॉन्शियसनेस। दिस इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस फेमस वर्स, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंध तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और अगले बुधवार को प्रजापति ने प्रजा से क्या कहा, यदि आपको जानना है, सेम टाइम सेम प्लेस, एवरीथिंग समकाल देश हेतु अर्थ। सो टू फाइंड आउट हु इज प्रजापति, हु इज प्रजा, एंड क्या उन्होंने किसे क्या कहा, तो जानने के लिए, इस मिस्ट्री को अनफोल्ड करने के लिए अगले बुधवार को हम फिर मिलेंगे इसी जगह पर। जय श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की जय।